نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 18ویں پارے کا آخری رب دیکھیں گے سورة نور کی آیت نمبر 51 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بے شک ایمان والوں کا قول تو یہی ہوتا ہے کیا کہ جب بھی ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں ایسے ہی لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے اس آیت میں پوری سورت کے اندر آئے ہوئے احکامات کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کا حل دیا گیا سورت نور کا آغاز بھی بڑا انیوژل تھا سورت انزلناها وفرضناها یعنی انداز اتنا شاہی قسم کا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں جو تم سننے بیٹھے ہو ایک مالک کا کلام ہے فرض ہیں کوئی آپشنل باتیں نہیں سورت کے بیچ میں احکامات تھے اب ادھر سے سورت کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے گو کہ ابھی کچھ باتیں آگے مزید آئیں گی لیکن یہاں یہ بتا دیا کہ یہ ساری باتیں ماننے والی ہیں سچا ایمان کیا ہے کہ لبیک کب جب حج پہ جائے نہیں لبیک ربنا وسعدیک اے اللہ تو جو حکم دے گا اس پہ لبیک اور اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا حج کے موقع پہ جو لبیک اور اس طرح کے کلمات کہلوائے جاتے ہیں اصل میں یہ اس بات کا سمبل ہوتا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ہی آ کر اس بات کا اقرار کر لو کہ میری زندگی اللہ کے گرد گھومے گی اور جو حکم اللہ دے گا میں اس کو مانوں گا اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سمعنا کے بعد اطعنا یہود کو بھی یہی حکم تھا لیکن انہوں نے برملا کہا کہ سمعنا و اسینا وجہ بھی اللہ نے پیچھے سورہ بقرہ میں بتا دی وہ شرب فی قلوبہم العجل کیا پتہ چلا کہ اصل کامیابی کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے اس حکم پر چلے اور اس کو اپنا فخر سمجھے پھر اس کے بعد فرمایا اس کے برعکس کوئی اور لوگ بھی ہیں اور وہ کون وَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل پڑیں گے یہ کب کہتے تھے جب ابھی وقت نہیں پڑا ہوتا تھا جب جوش آیا ہوتا تھا جب جذبے بلند ہوتے تھے اور جب ان کو لگتا تھا کہ دین کی طرف آنے کے بعد ہمیں کچھ دنیا کی بھی چیزیں ملیں گی تو خوب بڑے بڑے بلند بالا قسم کے دعوے کرتے تھے کہ بس ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں پھر دیکھیں ذرا ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہو قسمیں مت کھاؤ تمہاری اطاعت کا حال تو معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے حالات میں دین کی بات کا دعویٰ کرنا اور اس پہ بڑھ چڑھ کے بات کرنا اگر اس بات کو عمل کے ساتھ سپورٹ نہ ملے تو بعض دفعہ یہ صرف ایک لپ سروس بن جاتی ہے اور اللہ کو پھر ایسے دعوے بھی پسند نہیں دوسرے لوگوں کو تو شاید نہیں پتہ چلتا لیکن ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ کو ہر بات کی خبر ہے کامیابی کیا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بوجھ رکھا گیا وہ اس کا ذمہ دار ہے اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے ایک ایک لفظ کے اندر ہزاروں باتیں ہوں گی دنیا میں عموماً جب بھی اللہ کے راستے کا حکم ہوتا ہے اللہ کی بات ماننے کا ہوتا ہے تو لوگ یہ سوچ کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد پھر ہماری دنیا چلی جائے گی یا ہم دنیا میں مس فٹ ہوں گے حالانکہ آپ دیکھیے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو فائزون میں ہونا چاہتے ہو اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو سنو اس پہ عمل کرو اور جو کہو اس کو نبھاؤ اور بات تو سچ سچ سمجھ آ ہی گئی جو مان لیں گے مشکل حالات میں نیکیاں کر لیں گے इनके साथ अल्लाह के कुछ वादे क्या? वादल्लाहुल्लज़ीना मनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा फरमाया तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करें कि वो इनको इसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है, उनके लिए उनके इस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ने इनके हक में पसंद किया है, और इनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक न करें, और जो इसके बाद कुफर करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। नमाज कायम करो, जकात दो और रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। जो लोग कुफर कर रहे हैं इनके मुतालिक इस गलत फहमी में न रहो कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे, इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इस आयत को तो हाईलाइट कर लीजिए, इसमें एक बहुत आम सवाल का जवाब है, और वो क्या कि जब से दीन पर आए हैं मुश्किलात बहुत हैं, जब से दीन की तरफ आते हैं घर वाले नाराज हैं, खानदान वाले तंग हैं, ये है वो है। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी मदद का एक कानून बता दिया, और वो क्या है कि अगर तुम जमे रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी पसंद का दीन न सिर्फ ये कि तुम्हारे इस 5-6 फुट के जिस्म पे लाएगा, बल्कि तुम्हारे चंद गज के घर में लाएगा, तुम्हारे खानदान में लाएगा। और खौफ की जो हालत दीन के साथ तारी हो जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे, फुला नाराज ना हो जाए, खानदान मुझे ना छोड़ दे, अल्लाह कहते हैं ये बदल जाएगी। और होता भी ऐसे ही है, चूंकि दीन का जो शौरी पहलू है वो आज हमारे लिए अजनबी है, मुआशरे के अंदर एक और ही दीन होता है। हम जब अल्लाह की किताब से दोस्ती करके उस दीन को अपनाना चाहते हैं तो सारे ही मुआशरे के अंदर एक किस्म की हलचल मच जाती है और तन्हाई बहुत आती है। इंसान को लगता है कि शायद मैं इस मुआशरे में सेट नहीं हो सकता, आउटफिट फील करता है इंसान, लेकिन कानून क्या है, अगर तुम जमोगे तुम्हारे दीन को अल्लाह जमा देगा। आप अपनी जिंदगी को देखें, एक कोर्स करने के बाद अब दूसरे कोर्स के मिडल में है, क्या आपके घर की हालत बदली? क्या आपके शौहर ने कबूल कर लिया आपके इस पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने को? यकीनन किया, और अगर अभी तक नहीं किया तो फिर कमी अंदर है। वक्त के साथ सबको पता चल जाता है कि यही इनकी खुराक है, और जहां मुमकिन ना लगे कोई काम करना मुश्किल हो तो अकीमुस्सला, फिर नमाजों से, सदके खैरात से, माल अल्लाह के रास्ते में देकर, अल्लाह की इताअत के जरिए से अल्लाह को राजी करो, फिर उम्मीद की जाती है कि तुम पे रहम किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो भी अकल की हद तक नहीं पहुंचे 3 औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। कौन से हैं वो 3 औकात? 1, 2, 3 करके हम नोट कर सकते हैं। सुबह की नमाज से पहले, ये वक्त कौन सा होता है जब अमूमन इंसान साफ सुथरा होता है, गुसल की हाजत हो तो गुसल करता है। दोपहर को, जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, गर्मियों की दोपहरें और खास तौर में अरब में लंबी दोपहरें होती थी, गर्मी की शिद्दत की वजह से इंसान जो बाहर के मोटे कपड़े या इस तरह के एक्स्ट्रा कपड़े उनको उतार कर बिल्कुल हल्के फुल्के ड्रेस में घर में अमूमन कैलूला कर रहा होता है, उस वक्त भी एक दूसरे से इजाजत लेकर आना चाहिए। और ईशा की नमाज के बाद अमूमन ये वक्त भी तन्हाई का होता है, शोहर और बीवी की खलवत का वक्त होता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त है, इनके बाद वो बिला इजाजत आए तो न तुम पर कोई गुनाह है न उन पर, तुम्हें तो एक दूसरे के पास बार बार आना ही जाना होता है। यहां आप देखिए कि गुलाम तो आज नहीं दिखते, मुलाजिम चले वो तो किसी हद तक इजाजत लेकर ही घरों में कमरों में आते हैं, ये असल में पहले पिछली आयात में हमने देखा था घर में दाखिल होने के काम आते हैं, ये घर में रहते हुए कमरे में आने के आदाब है। अल्लाह ताला ने माँ बाप और औलाद का रिश्ता बड़ी इज्जत वाला रिश्ता बनाया, अल्लाह ताला चाहते हैं कि बच्चों के दिल में माँ और बाप के लिए जो एक तस्वुर कायम है वो कायम रहे। अब इंसान बेतकल्फी में और शोहर और बीवी के खसूसी एक ताल्लुक के साथ जिसमें इंसान हंस के बोलता है, बात करता है, रिलैक्स होता है, नहीं चाहते कि ये मामला बच्चों पे एक्सपोज हो। लेकिन दुख की बात है कि जब दुनिया में इस हद तक बेहयाई फैली कि माँ बहन, माँ बाप, भाई बहन आपस में रिश्तों की तमीज मिट गई, अगर बाहर नंगी टांगे हैं तो माँ की भी टांगे नंगी हैं, नतीजा हुआ कि बच्चों के लिए माँ कोई इतनी काबिल एहतराम चीज ना रही, तो ये घरों में जो एक कमरे से दूसरे में जाने की पाबंदी है ये उस इज्जत के रिश्ते को कायम करने के लिए। और दूसरा, अल्लाह मुहर्रमात से जिना को रोकना चाहता है, हम सबको भी अपने घरों में यही असूल बनाना चाहिए। बाद अब छोटे कमरे आधी आधी रात को उठ के इधर आ जाते हैं उधर आ जाते हैं फिरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू से उनका पर्दा होना चाहिए ताकि इसके बाद फिर सारी जिंदगी ये चीज उनके ऊपर आती रहे। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने इरशादात की वजाहत करता है और वो अलीम और हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुंच जाएं तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। यहाँ से देखिए कि घर के जो बड़े बच्चे जो काम करते हैं ना वही काम पे छोटे बच्चे करते हैं। तो यहाँ बात तो हुई बच्चों की, लेकिन क्या घर में रहते हुए देवर और नंदे और घर के दूसरे बच्चे मसलन जेठ के बच्चे नंदों के, उनके लिए भी यही कानून है? यही कानून है। बस दफा हम जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे साथ रहते हैं तो सारी हदें पामाल कर देते हैं। जब देखो देवर साहब भाभी के कमरे में गुस्से में, नंद का जब दिल चाहे इजाजत लिए बगैर कमरे में आ जाएं और उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी अलमारियों को देखें, उनके साथ अपना ये मामला रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुहसब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा नपातुला ताल्लुक रखते हैं और बाज दफा इस किस्म की बेतकल्फियां बाद में बहुत बड़े संगीन मामलात का पेश खेमा बन जाती हैं। अब कुछ बातें औरतों के बुढ़ापे के नाते के साथ, क्या वल कवायद मिनन निसाई, और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हों निकाह की उम्मीदवार ना हों, क्या शर्त है कि औरत के अंदर से जिंसी जज्बात खत्म हो चुके हों और उसके अंदर वो अट्रैक्शन खत्म हो चुकी हो जो दूसरे को उसकी तरफ माइल करे। दो बातें, औरत के अपने दिल के जज्बे उतर चुके खत्म हो चुके, और दूसरा ये कि अब उसको बाहर जाते हुए कोई होश नहीं, कुछ चले और कुछ नहीं तो सुरमा और कंघी और जो भी मेहंदी लगाने का कोई मामला उस उम्र में होता है वो सब खत्म। बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली औरत कि जिसको घर में या घर से बाहर निकलते वक्त कोई अपने हुलिये में चेंज करने की जरूरत ना हो, अगर ऐसी औरतें वो चादरें अपनी उतार रखें, कौन सी चादरें जो जवानी में पहनी थी, और जवानी में कौन सी चादर पहनी होती है जो सूरत अल अहज़ाब में आगे हम पढ़ेंगे, युद्नीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। लोग कहते किधर है पर्दे की बात, किधर है बुरके की बात, तो चादर कौन सी उतारेंगी जो बाहर जाते हुए ली थी, तो जब जवानी में नहीं ली तो बुढ़ापे में क्या जिस्म के कपड़े उतारेंगे। यानी ये इतनी बड़ी दलील है पर्दे की और इस बात की कि औरत जिन कपड़ों में घर में होती है उसी में उठ के नहीं चल पड़ेगी। आजकल आप देखिए कि सर्दी है तो कोई हम में से तसव्वुर भी करता है कि हम बाहर निकलें और बगैर कोट और स्वेटर के आ जाएं। कितना को वक्त होता है घर से लेकर गाड़ी में बैठना, घर भी गर्म गाड़ी भी गर्म, और गाड़ी से निकलकर स्कूल या जहां भी आप जाते आते हैं, हम में से कोई सोच भी सकता है? और अगर कोई किसी को देख ले इसी तरह सादे कपड़ों में आके निकले तो कहेंगे मरना है, क्या हो गया, ये हो गया। सर्दी से हम इतना खौफ खाते हैं तो मर्दों की निगाहों से खौफ नहीं खाते? हम नहीं सोचते कि हमारे जिस्म का एक एक अंग उनको दिखता है, हमारे चुस्त कपड़े उनको दिखते हैं, हमारे हालात कितने उन पे खुले हुए हैं। छोटी सी बात है, जरासीम से हम डरते हैं, बैक्टीरिया से हम डरते हैं, वायरस से हम डरते हैं जिनको देखा भी नहीं हुआ, लोग कहते हैं तो मान जाते हैं कि है, लेकिन मर्दों की वो निगाहें जिसके अंदर शहवत भी हो सकती है, जिसके अंदर ताइश भी हो सकती है, जिसके अंदर तजस्सुस भी हो सकता है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। अपने आप को हम सोचें कि जिस तरीके से हम अपने आप को बाज दफा बाहर निकलते का रास्ता करते हैं, क्या मेरी नानी इस तरह कर सकती हैं, क्या मेरी दादी ऐसी थी, क्या मेरी दादी की दादी ऐसी हो सकती, क्या हजरत आयशा ऐसी हो सकती थी, हजरत खदीजा ऐसी हो सकती। यानी जितना सोचते जाएंगे हमारा दिल हमें जवाब देगा कि इस्लाम एक औरत से क्या चाहता है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ऐसी औरतें जो जवानियों में अपनी इस्मतों की हिफाजत कर चुकी अब अगर अपनी चादर एक्स्ट्रा उतारती हैं तो इन पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अमूमन इंसान इस उम्र में कमजोर हो चुका होता है, बीमारियां लग चुकी होती हैं, चादर संभल नहीं रही, बुरका ऊपर उठ नहीं रहा। लेकिन शर्त क्या है कि बशर्ते के जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। अब ये नहीं कि बूढ़े हो गए तो ऑफ वाइट कलर की मैचिंग शुरू हो गई, जरकोन के सेट पहन रहे हैं और इस तरह पर्ल्स के सेट पहन रहे हैं, बिल्कुल किसी किस्म की अट्रैक्शन ना हो उनमें, ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो इनके हक में अच्छा है। यानी अल्लाह का मशवरा क्या है, वही यस्ता फिफ न खैरुल्लहुन। और एक बूढ़ी औरत जब किसी सहाबी ने उनको देखा मोटी चादरों में लिपटी हुई, कहा अम्मा आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि वल कवाइदु मिनन निसा, कि बैठ रहे हैं वो औरतें जो अपने घरों में हैं वो अगर मोटे कपड़े उतारती हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो कहने लगी क्या तुमने आयत का आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ा, वही यस्ताफिफ न खैरुल्लहुन्ना। तो ये तो तकवा की बातें, फतवों से ये बातें समझ नहीं आती। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। कुछ खाने पीने की बातें, ليس للعمى حرج. कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँ नानी के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारी सपुर्दगी में हों, यानी जिनकी कीज तुम्हारे पास हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों पर सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई है, बड़ी बाबरकत और पाकीजा। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझ बूझ से काम लो। ये आयात बताती हैं कि दीन इस्लाम कितना मॉडरेट रिलीजन है, कितना प्रैक्टिकल है। बाकी बातों के साथ साथ खाना पीना इस हद तक को दीन का हिस्सा बना दिया। खाने के बारे में बाज मजाहब में शर्त क्या है कि सब मिलकर ही खाएंगे, और बाज ऐसे हैं कहते हैं कि किसी ने छू भी लिया आपकी प्लेट को तो उसको फेंक दो क्योंकि जरासीम आ गए। अल्लाह ने दोनों बातें बीच में रख दी, और इस एक आयत की वजह से हमारे दिलों को कितना सुकून मिला कि हम अपने रिश्तेदारों के घरों में जाके खाते हैं, वो खुद खिलाते हैं, वो तो मेहमानी में, लेकिन अगर आप कहीं रहते हुए किसी वक्त कोई चीज फ्रिज से लेके खा ली उनकी इजाजत के बगैर पूछे बगैर, तो इजाजत है। होना क्या चाहिए? मारूफ तरीका। चाबी कोई आपको अपने घर की दे गया, अब आप क्या उसका सारा फ्रीजर खाली कर दें? नहीं, एक असूल छोटा सा बना लें जो बहुत सारे सवालात का जवाब आपको दे देगा कि जो काम किसी के सामने कर सकते हैं बस वही उसके पीछे से कर लें। दैट्स इट। अगर मैं अपनी दोस्त के सामने उसके फ्रिज में से एक टमाटर ले सकती हूँ और उसको बता भी सकती हूँ, तो क्या मैं उसके पीछे ले सकती हूँ? ले सकती हैं। और क्या मैं अपनी दोस्त जो मौजूद है उसके फ्रीजर में से कोई 2 किलो गोश्त का पैकेट निकाल के ले जा सकती हूँ? नहीं निकाल सकती, तो फिर मैं पीछे से भी ना लूं। बहुत मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, ले लीजिए, साथ इन्फॉर्म कीजिए, और मुनासिब मौके पे फिर उनको वो चीजें पलटा भी दीजिए। फिर देखिए मोमिनों की बात, इन नमा से जो आयत शुरू होती है उसके बाद तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने बाकी सबको निकालकर बाहर फेंका। क्या? इन नमल मोमिनून, मोमिन तो असल में वही है, बाकी के सिर्फ बस एक नाम के मोमिन है। कौन है सच्चे मोमिन? मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने। दिल से मानना बात है, जुबान से इकरार करवा लिया बात नहीं बनेगी। और जब किसी इज्तमाई काम के मौके पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाजत लिए बगैर ना जाएं। अब देख लीजिए कि इन्नमा हसर का है, और हसर आप समझते हैं ओनली के मानों में, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका इख्तियार नहीं होगा। और दूसरी बात जहां नोट कीजिए, इजाजत इजाजत है, इन्फॉर्म नहीं करना। बाज लोग इजाजत लेने के बजाय सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, और बाज तो खैर से वो भी नहीं करते। अल्लाह ताला यहां से आखिरी रुकू में अब इज्तमाई काम करने वालों के औसाफ बताता है। देखिए जिनको छोटे काम करने होते हैं ना उनके अंदर छोटी छोटी खूबियां भी हो जाएंगी ना तो पार चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं उनके अंदर इखलाकी खूबियां बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसी है कि जैसे कोई पानी का एक छोटा सा कोई जौहड़ हो या पानी का एक मजमू है, उसके अंदर से आपने खुद गुजरना है तो निस्बतन आसान है, और अगर आपने एक दो बच्चे को उठाकर साथ कुछ चीजें उठाकर भी गुजरना हो तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक ऐसी मजबूत टीम अल्लाह ताला तैयार करवाते हैं अपने नबी के जरिए से कि जिन्होंने आपके बाद उम्मत का बोझ संभाला, और ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी बातों पर टोका गया जिस पे बाकी लोग परवाह भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आपकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकते, और आप इजाजत मांगे तो क्या करो? ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। मजबूरियां हो सकती हैं, इंसान की जिंदगी में ऊपर नीचे बातें होती हैं, इजाजत मांग लें तो ठीक है, बस जब वो अपने किसी काम से इजाजत मांगे तो जिसे तुम चाहो इजाजत दे दिया करो। यानी फैसला फिर नबी के हाथ में, कि सोचो गौर करो कि किसका काम वाकई सही है। कौन ऐसा है कि जो इजाजत ले तो रहे लेकिन उस बेचारे को समझ नहीं है कुछ और भी करे। यहां एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है हम सबके लिए, जो कि हम सबका पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है। तालिब इल्म भी हमारे पास आते हैं, हमारे पास साथी भी दीन के काम के लिए आते हैं। अगर आप इस काम पे जिम्मेदार कल बना दी गई कि लोगों के ना आने का या आने का रिकॉर्ड रखें, लोग आपको फोन करें कुछ करें, तो हर मुमकिन तरीके पे उनकी मदद करें। अच्छा आप नहीं आ रही, क्या वजह है? ये नहीं वो कोई कहे अच्छा जी इस्लाम ने कहा आज मैं नहीं आ रही, चलो ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपने बताया, नहीं मदद करें क्या वजह है, कोई राइट प्रॉब्लम है, अच्छा कुछ हम कर दें आपके लिए, अच्छा बीमार है कोई बात नहीं इधर आके बैठ जाए इधर लेट जाए। और इस तरीके से यानी इंसान को एक दूसरे को ऑलवेज कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देने चाहिए ताकि पता चल जाए कि क्या है। बाद दफा हम जब खुद मजबूर होते हैं ना तो हमारा जेहन काम नहीं करता, हालांकि हमारे पास दूसरी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। फिर उसके बाद फरमाया कि जिसे चाहो इजाजत दे दो और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआए मगफरत किया करो। ये भी नोट कीजिए कि वो दीन के काम से रुके हैं, ठीक है उजर ने उनको रोका, फिर अच्छे मैनर्स का इजहार क्या किया कि इजाजत ली, लेकिन इसके बावजूद नेकी से तो रह गए ना, उस नेकी ने हो सकता है उनकी जिंदगी में आने वाली किसी बीमारी को रोकना था, उनको किसी हादसे से बचाना था। तो अगर अब आप इनके लिए दुआ नहीं करेंगे तो ये बड़े खतरे में है। इससे क्या पता चलता है कि बाज दफा आने वाले और काम करने वाले दुआएं लेते हैं, लेकिन बाज दफा ना आने वाले लेकिन अच्छे अंदाज से इन टच रहने वाले अपनी मजबूरियां बताते रहने वाले ज्यादा दुआएं ले लेते हैं। आप देखिए ना जब कोई मिसाल है कि एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आज हमारी क्लास है कोई नहीं आया, बीमारी होगा ना, उसने जहमत ही नहीं गवारा की कि मैं बताऊं, तो हम में से कोई उसके लिए दुआ नहीं कर रहा। और अगर कोई आता है और नहीं आ सकता बीमार है, फोन कर देता है या बता देता है कि मैं आज मुमकिन नहीं आऊं मेरी बड़ी मजबूरी है, तो हम सब क्या करेंगे उसके लिए दुआ करेंगे ना। तो बस दफा इंसान दुआएं ले लेता है इस तरह के कामों से और अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है। फिर एक और एटिकेट जो दीन का काम करने वालों के लिए बहुत लाजिम है और वो क्या, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, मुसलमानों अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझ बैठो। यानी रसूल नबी सल्लम बहुत फेमिलियर थे, रुहमा बैनहुम वाली कैफियत थी, अल्लाह के नबी बहुत नरम थे, लेकिन इसका बाज लोग नाजायज से फायदा उठा लेते थे कि फिर आपसे भी उसी तरह बेतकल्लुफ होना चाहते थे जैसे अपने दोस्तों में होते थे अपने साथियों में होते थे। तो अल्लाह कहते नहीं, नबी का मुकाम बहुत बुलंद है, ऐसा ना हो कि बेतकल्फी में तुम उसकी किसी बात को अहम ना समझो, कोई ऐसा जुमला बोल दो जो उसकी शान के खिलाफ हो तो तुम्हारा अपना नुकसान हो जाए। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सिटक जाते हैं, यानी असल जहां बताना होता है जिस जगह एप्लीकेशन देनी होती है जहां इन्फॉर्म करना होता है वहां नहीं बताते और बस दूसरे को कह देते हैं बता देना मैं नहीं आऊंगी बता देना मैं जा रही हूँ, और बास दफा सहारा ले रहे होते हैं कि कोई सामने हो और हम चुपके से पीछे से निकल जाए। अल्लाह ताला कहते हैं फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अमरीही, रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाए या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। देखिए अल्लाह ने इस पे कितना ज्यादा डरा दिया कि मत सोचो कि तुम इस तरह से बच जाओगे बल्कि रसूल की सोहबत से दूरी तुम्हें किसी बहुत बड़े फितने में डाल सकती है। और सूरत चूंकि बहुत अहम अहकाम थे इसलिए अब आखिर में अल्लाह सुबहान तआला अपनी बड़ाई और क्यामत की जवाबदेही से हमें डराते हैं। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, खबरदार रहो आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, तुम जिस तरीके पर भी हो यानी जिस रविश पर चलोगे जो काम तुम करोगे अल्लाह को इसका खूब पता है। छुप सकते हैं हम में से कोई, हम अच्छे काम करें हम बुरे करें नहीं छुप सकते, होगा क्या, व यौम युरजऊन इलैही, जिस रोज लोग उसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो इनको बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं, क्योंकि वो अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। क्या बता दिया कि उस रब के पास जाना है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सारी जिंदगी समेना के बाद अतौना की बजाय असईना करते रहे लेकिन आज मुजरिम बन के कटहरे में खड़े हो। तो सूरत नूर हकीकत में जिंदगी को नूरानी कर देती है अगर इंसान इस पर अमल करने की नीयत से इसको सुने। पहली सूरत नूर है, नूर में भी रोशनी है और रोशनी अच्छे और बुरे का फर्क बताने वाली चीज है। अगली सूरत फुरकान है और फुरकान फर्क से, फर्क या फरूकू से क्राइटीरियन, अच्छी और बुरी बात को बताना, गोया के अल्लाह ताला हमें एक हिडन मैसेज दे रहे हैं कि अब जितना कुरान तुम्हारे सीनों में आ गया है अब तुम्हारे अंदर फुरकान पैदा होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा करने को क्या नहीं करने को कहा। अब तुम्हें लोगों से फतवे नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्ती ना बनाओ बल्कि इस्तफ्ते कलबक, अपने आप को खुद टटोलो, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कहा है। ये सूरत भी मक्की सूरत है और सूरत नूर वाला ही इसका दौर है, یعنی مکہ کے بالکل درمیان کے دور میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں پہ مشکلات بھی تھی اور تربیت ہو رہی تھی مسلمانوں کی. اس صورت میں مشرکین مکہ کے بہت سارے شبہات اور اعتراضات کا تذکرہ ہے جو گاہے بگاہے قرآن کے اوپر کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیمات پر وہ کرتے تھے. یاد رکھیے, جب سچا دین آئے گا, جب کوئی ریفارمر آئے گا نا دنیا میں, لوگ اس پہ تنقید کریں گے. لوگ ایک سیٹ سیٹ دین میں ہوتے ہیں, کوئی موقع آیا تو کچھ پڑھ لیا, کچھ ختم دلا دیا, کوئی میلاد کرا دیا. لوگوں کو یہ دین بڑا پیارا لگتا ہے. کئی مذاہب نے تو اس کو بھی آگے اور زیادہ کر دیا کہ جو مرضی کرو اور آ کے ہمارے جماعت خانے میں یہ پیسے دے دو اور یہ کرا دو. مجھے کسی ایک اسٹوڈنٹ کی بات یاد آ گئی, نام لینے کا دل نہیں چاہتا لیکن کسی اور مکتبہ فکر سے تھی. کہتے وہ بھی لوگ خود کو مسلمان ہیں لیکن عقائد ان کے کتنے بگڑ چکے تھے, پورا خاندان اسی میں تھا. اللہ نے ان میں سے کسی ایک عورت کو ہدایت دی, ہوتے ہوتے پھر وہ ماشاءاللہ بہت سارے خاندان جو ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں آئے, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پھر نبی ماننے لگ گئے. تو مجھے اس کی بات یاد آتی ہے, کہتی تھی استاذہ بڑا ہی دل گردے والا بندہ ہے جو اس دین کو چھوڑے گا جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی اس دین میں صاف ہمیں جماعت خانے والے بتاتے ہیں آ کے $500 جمع کرا دو, بوائے فرینڈ شپ کر سکتے ہو, جو مرضی پہنو, روزے نہ رکھو. میں نے خود اس اپنی پچھلے سال کی کلاسز میں اسی جماعت خانے کا ایک چھپا ہوا پیپر پڑھ کے سنایا تھا ریفرنس کے ساتھ. انہوں نے خود کہا ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں, بس ایک دفعہ اپنے بزرگ کی تصویر کے آگے جا کے تو یہ کر لیں, اور زکوٰۃ کی تو اب ضرورت نہیں. کہتی اتنا رنگ رونق والا وہ دین ہے کہ جس کو اللہ ہی چھوڑے وہی چھوڑتا ہے. اتنی دنیا اس میں, بے پردگی, بے حیائی, سب جائز ہے. یہ کر لو وہ کر لو کیونکہ تم اتنا پیسہ دے دو. اور وہ سو یا ہزاروں میں نہیں ڈونیٹ کرتے اپنے جماعت خانوں کو, وہ لاکھوں میں کرتے ہیں. کہ معروف بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سچے دین پہ آ جائیں تو کوئی مسلمانوں کی مسجد ادھوری نہ رہے. یعنی جو باطل پہ ہیں ان چکا چوندیوں میں نا, کہ ہماری مٹھی گرم کر دو تو تمہیں مل جائے. اور واقعی پھر جب ان کو دین ملتا ہے تو وہ پھر روتے بھی اور آہیں بھی بھرتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ مر جاتے تو ہم تو بڑے خوش تھے کہ ہم نیک ہیں. سلیو لیس شرٹس وہ کہتے ہیں ہم پہنتے ہیں, ننگی ٹانگے ہماری. اور وہ کہتے ہیں ہمارے مذہبی رہنما بالکل اس پہ تنقید نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے چندہ دیا ہوا ہے تو آپ بچ جائیں گے, کفارہ آپ دیتے جاؤ اور کرتے جاؤ. خشم الدین ہے. تو اس وقت ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کیا سوچنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں سچا دین ملے. کوئی بات نہیں, ہمارے دین میں کوئی بہت لوگوں کو چکا چون نہیں بھی دکھتی تو ہم نے کون سا اس دنیا میں رہنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا. کون ہے وہ؟ اللہ کی ذات. بندہ یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نازل کیا گیا؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا یا اس قرآن کو بھیجے جانے کا مقصد. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. نوٹ کیجئے گا, پہلی بات تو لفظ تبارک ہے, بہت خوبصورت لفظ ہے. برکہ, تھوڑے میں زیادہ ہو جانا. جو چیز اللہ کے راستے میں لگ جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے خود کو لگانے والے بھی بابرکت بن جاتے ہیں. وقت میں برکت, صحت میں برکت, غم بھی بابرکت ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے راستوں میں آنے والوں کو برکتوں کا تحفہ دیتا ہے. اصل خوشیاں ان کی زندگی میں آتی ہے, فائدہ مند ہو جاتے ہیں, دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں, لوگ ان سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس لفظ کے اندر بہت دفعہ تبارک کا لفظ آئے گا. قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ بھی آتا ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے خود کو اللہ کے راستوں میں لگا کر اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو بابرکت کرنا ہے انشاءاللہ, چھوٹے سے جسم کو. اور اگر اللہ کے راستے میں خود کو لگانے کو دل نہ چاہے تو اس کی شان کو سمجھ لیجئے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. یہاں تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے, ایمان بالقدر کی باتیں. آپ دیکھیں کہ تقدیر پر ایمان لانا بندے کو خوشیاں دیتا ہے. چند فائدے تقدیر پر ایمان لانے کے. پہلی بات ہے کہ تقدیر پر راضی ہونے والا, اس کو یقین ملتا ہے कि मेरा रब मेरे बारे में बुरा नहीं करेगा, और उसको ये यकीन होता है कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया है अल्लाह उसको पूरा कर देगा। इसी तरह गुनाहों की माफी का जरिया बनती है ये बात कि बंदा अल्लाह के फैसलों पे राजी हो, बड़े अजर का हसूल है। ये सब आयतें पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसके रेफरेंसेस की इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन ईमान बिल कदर असल में बंदे के दिल को खुशी से भर देता है, बहादुरी आ जाती है, जवां मर्दी आती है। कोई बेजा खुशियों और गमियों में अपने आप को नहीं मारता, उसको पता है ये मेरे रब का फैसला है। और सबसे बड़ी बात है कि तकदीर पर ईमान आए तो मौत का डर खत्म हो जाता है। मेरा वक्त आएगा तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर अभी आया कोई नहीं तो कोई मुझे मौत नहीं दे सकता। कोई गम कोई दुख आ जाए तो इंसान उस पर परेशान नहीं होते। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारी तकदीरें मुकर्रर की, लेकिन लोगों का हाल देखिए जो अल्लाह के बनाए हुए सारे फैसलों को छोड़कर वत्तखजू मिन दूनिही आलिहा, लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते। यानी जितना अल्लाह से डरना होता है उतना अपने जैसों से डरने लगते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं ना जिंदा कर सकते हैं और ना मरे हुओं को फिर उठा सकते हैं। अब देखिए कि दो तकदीरें हैं ना, एक इस दुनिया की तकदीर, वो क्या है, अल्लाह ने बना दी। हाँ, अल्लाह सुबहाना ताला ने पहले से बता दिया कि ये क्या होगा, लेकिन आखिरत की तकदीर हमने खुद बनानी है। किसी को अगर शौक है ना मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊं, तो आप आखिरत में ये शौक खूब पूरा कीजिए। और तकदीर अल्लाह का इल्म है, हुक्म नहीं है। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं ये फुरकान एक मन घड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है, बड़ा जालिम और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। जो खुद नहीं करते वो दूसरों को करता देकर खुश भी नहीं होते, कहते ऐसे ही ये बस इनकी बातें, कोई ये सही दीन की बातें नहीं। वकालु असातीरुल अव्वलीन, कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और वो इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। ए नबी इनसे कहो कि इसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है, हकीकत ये है कि वो बड़ा गफूर रहीम है। आप देखिए कि तबारक अल्लाजी में पहले अल्लाह का जिक्र आया, अब कुरान का जिक्र पड़ा, और अब आगे देखिए रसूल का जिक्र है। वकालु माली हाजर रसूली याकुलु ताम, ये कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और वो ना मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो, देखो कैसी कैसी हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। तबारक अल्लज़ी इंशा जाला लक खैरा, बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर तुमको दे सकता है, एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। क्यों तो बातें करते हो? आप देखिए कि नबी सल्लम ने इन लोगों को क्या कहा, इसके बावजूद अल्लाह के नबियों के ऊपर इल्जाम। लोग हमेशा दीन वालों को सुपरस्टिशन सोचते हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं ये, पानी पे चलते हैं या हवाओं में उड़ते हैं, जब उसको आम इंसानी जरूरियात के साथ देखे तो कहते नहीं, कोई खास बात तो नहीं। शख्सियत परस्ती में और हक परस्ती में यही फर्क है। शख्सियत परस्ती में लोग अपने बुजुर्गों को बहुत बड़ा एक पीर बनाकर और उनके हाथ पांव चूमते और उनके साथ क्या क्या कहायतें रवायतें डाल देते, हालांकि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी जात को प्रोजेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम बहुत बड़ा समझो। नहीं मानते ना मानो, तुम्हारे मुतालबे और तुम्हारा रब, मैंने हक बात तुम्हें बता दी। ये मुतालबे सिर्फ एक बहाना है, वलकज्जबू बिसाती, असल बात यह है कि लोग इस घड़ी को झुटला चुके हैं और जो इस घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है, वो जब दूर से इनको देखेगी, कौन, जहन्नम उसकी आग, तो ये इसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे। सोचिए जरा, यहां से एक बिल्कुल इमेजिनेशन में ले जाए कि जहन्नम है, अल्लाह ताला पीछे से इनको डाल रहा है, पहले तो जहन्नम इनको देख कर चिंघाड़ेगी, तगय्युदम व ज़फीरा, सूरत मुल्क में भी हम पढ़ते हैं ना कि वो जोश मारती है और खोलती है और जोश की आवाजें आएंगी। वह इजाउल को मिन हम मकान, और जब ये दस्तों पा बस्ता यानी हाथ और पांव बंधे हुए, इमेजिन करें आगे सामने आगो और किसी के हाथ भी बांध दे और पांव भी बांध दे और उसके बाद एक तंग जगह में ठोंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। बिल्कुल ऐसी सोच लीजिए कि जैसे किसी को बांध बूंद के ओवन में डाला जाए। कैसा इंसान होता है, कितनी बड़ी चीज है जिसे आज हम बेखौफ है। शायद ही कोई पिछला दिन कल का सोच ले कि हमने एक दफा शौरी तौर पे अल्लाह जी इतना मिनन नार का हो जहन्नुम से बचाए। बस मुंह की बातें तो करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे कि अल्लाह मौत दे दे। आज मौत से कितना डरता है इंसान, वहां उस जहन्नुम में मौत को पुकारेगा और कहा जाएगा ला तदुल यौम सुबूरम वाहिदम वदु सुबूरन कसीरा। इस वक्त इनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो, मतलब यह कि मौत नहीं आनी। इनसे पूछो क्या मिला तुम्हें चस्कों से, जिंदगी के मजे जो ले लिए तुमने और वो भी क्या लिए। बजाहर लगता था तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन आज बताओ ये मजा अच्छा है या खुला जालिका खैरन अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून। इनसे पूछो ये इंजाम अच्छा है या वो अवधि जन्नत जिसका वादा खुदा तरस परहेजगारों से किया गया, जो इनके अमल की जजा और इनके सफर की आखिरी मंजिल होगी। बताइए अपने नफ्स से पूछे हम, अगर हम हर ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी करना चाहते हैं तो फिर वहां की ख्वाहिशें कहां पूरी करेंगे, जिसमें इनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका अता करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है। इसको हाईलाइट कर ले, वकान अला रब्बिक वादम मसूला। कल अगर ना मिला ना ये सब कुछ तो जाके क्लेम फॉर्म दे देना कि अल्लाह तूने क्यों नहीं दिया, तूने तो कहा था ये जन्नत मिलेगी। हम माइनस में आते थे, हम सर्दी में आते थे, हम गर्मी में आते थे, हम मेहमानों में आ जाते थे, बीमारियों में भी आते थे, बच्चों को रुला के भी आते थे। अल्लाह आज किधर है वो जन्नत जिसके वादे किए थे। व यौम यक्षुरुहुम व मा याबुदून मिन दूनिल्लाह। और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इनके इन माबूदों को भी बुला लाएगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो इनसे पूछेगा, ये सवाल नोट कर लीजिए, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राहे रास्ते से भटक गए थे। वो अरस करेंगे पाक है आपकी जात, हमारी तो ये मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाए, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया हत्ता कि ये सबक भूल गए और शामत जदा होकर रहे। यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद और तुम्हारी इन बातों को जो आज तुम कह रहे हो, फिर तुम न अपनी शामत को टाल सकोगे न कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे हम इसे सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। ए नबी, जो तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो। क्योंकि वह काना रब्बुक बसीरा, तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। कितनी खूबसूरत आयत पे पारे का इख्तिताम है। फिक्र क्यों करते हो, किसी से अगर नहीं बनती, कोई बंदा खामखा ही तुमसे हसद करता है, कोई बंदा खामखा तुम्हारे ऊपर बातें लगाता है, इल्जामात लगाता है, सब्र कर लो। चंद दिन का सब्र हमेशा की जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें फुरकान दे दे, हक और बातिल का फर्क करने वाले बना दे और हमें सुनकर मानने वाला बना दे। असल बात मानना है। आप देख रहे हैं पूरा कुरान इसी बात की दुहाई देता है कि अमल 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 से पता चले कि तुम्हारे दिल में क्या आग लगी हुई है। और अल्लाह ताला हमें हकीकत में ईमान की हलावत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।